गुरु भक्ति योग अपने आप को आचार्य की सेवा में सौंप दो, तन मन एवं आत्मा को खूब तत्परता से अर्पण कर दो। गुरु श्रद्धा का सक्रिय स्वरूप माने गुरु के चरण कमलों में संपूर्ण आत्मसमर्पण करना। गुरु सेवा के नित्य क्रम में खूब नियमित रहो। अपने आचार्य की दैनिक निजी सेवा में घड़ी के समान नियमित रहो। आचार्य एवं हर एक संत का आदर करना यह नम्रता का चिन्ह है। आचार्य एवं आदरणीय व्यक्तियों की उपस्थिति में ऊंची आवाज से बोलो नहीं। गुरु के वचनों में विश्वास रखना यह अमरत्व के द्वार खोलने के लिए गुरु चाबी है। जब आप किसी महान गुरु के शिष्य हो तब अन्य किसी को आप अपने शिष्य बनाओ नहीं, एवं खुद गुरु बनने का प्रयास करो नहीं, उनको अपने गुरु भाई मानो। गुरु करना और बाद में उनको धोखा देकर उनका त्याग कर देना, इसकी अपेक्षा गुरु नहीं करना और भवाटवी में भटकना बेहतर है। श्री आनंद महिमा कह रही हैं कि सद्गुरु का लाभ बहुत सुकृत से होता है। केवल सुकृति से ही सद्गुरु का लाभ हो ऐसा नहीं है, उनकी अहेतु की कृपा की भी आवश्यकता होती है। गुरु मंत्र इष्ट ये सभी एक है। जप के समय गुरु ने जिस मूर्ति का ध्यान करने को कहा उस मूर्ति या गुरु के श्रीचित्र का ध्यान करना चाहिए। पर गुरु यदि किसी को ध्यान का कोई विशेष स्थान जैसे षट चक्र का कोई चक्र ध्यान करने को कह दें तो उसकी बात दूसरी है। वह गुरु के निर्दिष्ट स्थान में ही ध्यान करेगा। हृदय ही सुख दुख की जगह है। हृदय में गुरु या इष्ट को बैठाकर ध्यान आरंभ करो। पेड़ के तने में पानी देने से ही वह पानी जड़ में पहुंचता है और उसकी सहायता से पेड़ बड़ा होता है। उसी प्रकार हमारे शरीर रूपी वृक्ष की जड़ मस्तक में है। हृदय हुआ इस पेड़ का तना, यहां पानी देने से ही वह जड़ में पहुंचता है। इसलिए ध्यान हृदय में करना पड़ता है। तुम लोग ध्यान करने जाओगे तो क्या करोगे। गुरु या इष्ट जिसको हृदय में बैठाया है उसी का चिंतन करोगे, पर चिंतन करने पर भी देखोगे कि यह मन स्थिर नहीं रहता। एक मिनट भी मन पकड़ कर रखा नहीं जा सकता। इसलिए गुरु को हृदय आसन पर बैठा कर श्वास प्रश्वास की ओर लक्ष्य रखना। यह श्वास प्रश्वास ही हमारा प्राण है, इसी की सहायता से ही हम लोग जीवित हैं। मनुष्य पशु पक्षी ये सब अपने में एवं परस्पर भिन्न होने पर भी एक विषय में अर्थात प्राण की दृष्टि में एक है, क्योंकि सभी प्राण के द्वारा जीवित हैं। इसलिए गुरु को हृदय में बैठा कर सोचना चाहिए कि गुरु प्राण रूप में विश्व ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। विश्वव्यापी हैं और श्वास प्रश्वास पर लक्ष्य रखकर गुरु मंत्र जपते जाना चाहिए। श्वास भीतर जाए तो बाहर आए तो एक। पूजा आदि के समय तुम लोग देखते हो कि लोग मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। चैतन्य सत्ता सब जगह ही है, वह अन्य जीवों में जैसी है मनुष्य में भी वैसी है, परंतु मिट्टी में जो यह चैतन्य सत्ता है वह हमारे बोध में नहीं होने के कारण ही मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। इसी प्रकार गुरु को हृदय आसन पर बैठा कर वे ही प्राण रूप में सर्वत्र विराजमान है सोचकर श्वास प्रश्वास की ओर लक्ष्य रखकर जप करना। खूब चंचल बालक को घर के भीतर शांत रखने के लिए जैसे उसके हाथ में खिलौना देना पड़ता है, यह भी उसी प्रकार है। और एक चीज लक्ष्य करके देखोगे कि पानी में जो लहर उठती है वह पानी छोड़ और कुछ नहीं है, परंतु चंचलता के कारण वह पृथक दिखाई देती है। एक ही वस्तु युगपद स्थिर और चंचल, खंड और अखंड, यही नित्य लीला। इसके बाद भी अवस्था है जहां जल या तरंग कुछ भी नहीं है, वह अव्यक्त अवस्था है। श्वास प्रश्वास रूप अथवा प्राण रूप गुरु के ऊपर चंचल मन को युक्त करके यदि थोड़ी देर जपादिक करो तो देखोगे कि मन स्थिर हो गया है एवं वही चैतन्य सत्ता जो तुम में सर्वदा है उसका प्रकाश हुआ है। उसका प्रकाश होने पर ही संशय की समाप्ति होती है। श्वास प्रश्वास के ऊपर लक्ष्य रख के जप करने की एक और सुविधा यह है कि यह सर्वदा सब स्थानों पर किया जा सकता है। इसके सिवाय ज्ञान कर्म भक्ति सभी मार्ग के लोग इसको कर सकते हैं। गुरु को सर्वभूत में प्राण रूप में देखना ज्ञान मार्ग का सहायक और जपादिक क्रिया कर्म मार्ग के सहायक हैं। इसलिए देखो ज्ञान, कर्म भक्ति जो भी मार्ग क्यों न हो, इस प्रणाली से साधन कर सकोगे।